नारायण 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 नारायण। जैसे कोई मूर्ति बनाते हैं तो सोना चांदी आदि गाल करके ढाल देते हैं, वो मूर्ति जैसी बन जाती है। इस जैसे अपने जीवन को सत्संग रूपी सांचे में ढालकर वैसा ही जीवन बनाओ। सत्संग की महिमा में ऐसी बात सुनी जाती है, पढ़ी जाती है और कुछ देखी भी जाती है कि इसमें सुधार होता है, स्वयं होता है, स्वाभाविक होता है। हम थोड़ा सा अगर निमित्त बन जाए तो विशेषता से होता है। सत्संग सेवा ये खजाना, एक बड़ी भारी संपत्ति है, बड़ा लाभ होता है। मैं तो ये बात कहा करता हूं कि एक कमाकर धनी होता है, एक गोद चला जाता है तो गोद जाने वाले को जोर नहीं आता और जल्दी धनी बढ़ जाता है। ऐसे ही सत्संग जिसको मिल जाता है, वास्तविक सत्संग, तो उसको वो मेहनत करनी नहीं पड़ती, स्वाभाविक ही जीवन शुद्ध बनता है। गोद जाने वाले की तरह उसको कमाई संपत्ति मिलती है, इकट्ठी की हुई संपत्ति मिलती है। तो सत्संग के द्वारा बहुत ज्यादा लाभ होता है। जहां सत्संग होता है असली, वहां लोग सुधरते हैं, ऐसी बात देखने में आती है। जैसा तुझे होना चाहिए वैसा तो नहीं होता है। इसमें ये बात है कि हताश न होकर उसमें ऊंचा और चढ़ना चाहिए, थोड़े थोड़े लाभ में संतोष नहीं करना चाहिए। पुराने कर्मों के कारण से जो हमें परिस्थिति मिले उसमें तो संतोष करना चाहिए, और अगाड़ी जो काम करना है उस करने में संतोष नहीं चाहिए। उसमें असंतोष जितना रहेगा उतना ही बढ़िया है। जैसे लोभी आदमी धन में संतोष नहीं करते हैं तो वे नहीं करते तो गलती करते हैं। उनसे अपने को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि अपने आध्यात्मिक उन्नति में संतोष न करके अगर बढ़ते ही चले जाओ, बढ़ते ही चले जाओ, बढ़ते ही चले जाओ, कहीं भी विश्राम नहीं कर इतना हो गया हमारा। जैसे रास्ते चलने वाला पुरुष देखता है तो नीलों पर नाम भी इतनी दूर आए हैं, इतनी दूर बाकी है, तो आगे इनकी तरफ ज्यादा नहीं देखना है, इतना बाकी पड़ा यही देखना है और उसको तय करना है। इसी तरह से अपने कमी को देखते हुए उसकी पूर्ति के लिए सतत प्रयत्नशील रहे, निरंतर उद्योग में लगे रहे। करने में निमित्त अपने को बनावे, परंतु उनमें सफलता होती है उसमें भगवान की कृपा माने। निमित्त मात्र अपने को बनाना है, सफल होती है भगवान की कृपा से। भगवान की संत महात्माओं की कृपा सदा बनी रहती है, अनादि काल से अनंत काल तक भगवान की कृपा रहती है, और संत महात्मा भी होते ही चले आए हैं और हैं और होते ही रहेंगे, उनकी कृपा दृष्टि भी संपूर्ण जीवों पर रहती है, तो उनकी कृपा से सिद्धि होती है। हम नियम पालन करके, सत्संग करके, अच्छे भाव अच्छे आचरण अपने में ले आवे तो निमित्त मात्र हम बने, पर उनके बढ़ने में कृपा मानने चाहिए। माम आश्रित यत्न की, भगवान की चरणों का आश्रय लेकर यत्न करें, वो सब कुछ जान जाते हैं, तो भगवान की कृपा का आश्रय लेकर चले। निमित्त हम बने, उत्साह हमारा हो, उद्देश्य हमारा हो, प्रयत्न हमारा हो, परंतु सिद्धि में भगवान की कृपा है, ऐसे मान करके चले। और जितना हो गया है उसका टीचर मैंने इतनी मैंने उन्नति कर ली, वो अभिमान न हो, परंतु बाकी बहुत बड़ा भाई, जब तक परमात्मा तत्व की प्राप्ति न हो जाए तब तक क्या किया, बहुत कम है। वो प्राप्ति होने पर फिर भी संत महात्माओं का उद्योग समाप्त नहीं होता है, उनका उद्योग जारी रहता है। मैंने तो संतों से ऐसी ऐसी बातें सुनी है कि जब तक संसार में एक जीव भी बंधन में है तब तक संतों का पुरुषार्थ पूरा कैसे हुआ। कोई बंधन में न रहे सबके सब मुक्त हो जाए। कति ये बात संभव है? कति संभव क्यों नहीं? जब एक की मुक्ति हो सकती है तो सौ की, हजार की, दस हजार की, लाख की, दस लाख की क्यों नहीं हो सकती? मुक्ति होने की जब गुंजाइश है तो सबकी होने की गुंजाइश है। तो मात्र जीव कल्याण न हो जाए तब तो हमारा पुरुषार्थ बंद कैसे हो? सबका कल्याण करना है हमें, सब मेरे करके अपना अपना सबका ही कल्याण करना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्भवति। सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके सदा मंगल ही मंगल होता रहे, किसी को कभी दुख न हो, ये बात अच्छे संतों का तो है कि सब भगवान के भक्त बन जाए, सब जीवन मुक्त हो जाए, सबका ही कल्याण हो जाए, कोई भी कल्याण से बाकी ना रहे। इसमें मनुष्य मात्र का तो कल्याण होना ही चाहिए, दूसरे जीव जंतु तो अपना कल्याण करने में असमर्थ है, अनधिकारी भी है, निर्बल भी है, अबल बल भी नहीं है, योग्यता नहीं है, अधिकार भी नहीं है। यदि भी परमात्मा की तरफ चलने में बाधा नहीं है, परंतु फिर भी मनुष्य मात्र को तो विशेषता से अधिकारी माना है। और इसमें एक बहुत विलक्षण बात है, वो देवताओं के लिए भी नहीं है, वो अधिकार मनुष्यों के लिए है। देवताओं में भोग भोगने की मुख्यता है, जैसे नरक के जीवों को उसका दंड भोगने के दुख भोगने का अधिकार है, ऐसे देवताओं का जो अवतार होना, देव का जन्म होना है, वो सुख भोग के लिए है। तो और जीव जंतुओं का अपने कर्म फल भोगने के लिए है। भूत प्रेत पुषाचारी वे भी अपने कर्म फल भोगते हैं, पर मनुष्य तो ये केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही है, केवल उद्धार करने के लिए ही मानव जन्म है। इस मनुष्य जन्म की महिमा कहते हुए दुर्लभ वो मानुष हो रही है, भागवत में मनुष्य बड़ा भाई दुर्लभ है। तो दुर्लभ साज सुलभ कर पावा, अपने दुर्लभ साज बड़ा सुलभता से मिल गया है, तो मनुष्य तो केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही है। यही तनु कर फल विषय न भाई, गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, इस मनुष्य शरीर का फल सांसारिक भोग भोगना नहीं है। स्वर्ग स्वर्ग तो स्वर्ग के लिए वो जो किया जाए वो थोड़ा सा सुख होगा और क्या फायदा होगा। आप होना लोका पुनरावर्तना, ब्रह्म लोग तक लौट करके पीछे आते हैं तो वहां जल्द क्या हुआ, थोड़ा दिन एक सुख भोग लिया। वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा की प्राप्ति से वंचित ही रहे, साधारण भाषा में कहते खोटी हुआ। ब्रह्म लोग करके स्वर्ग पर जाकर सुख भोगा तो इतने दिन बर्बाद कर दिए, पहले ही अपने मुक्ति कर लेते तो क्यों आफत आती। तो मनुष्य शरीर का तात्पर्य परमात्मा की प्राप्ति करना। तो भाइयों बहनों से कहना है, अपने अपने तरफ से पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के लिए उद्योग करें। उसमें भी प्राप्ति हम अपने उद्योग से कर लेंगे, ऐसा नहीं, प्रभु कृपा से होगी। क्यों? कि प्रभु कृपा है, पहले तो कृपा की पहचान है, मनुष्य शरीर मिला है, और मनुष्य शरीर मिलने पर फिर भगत भक्त को सत्संग मिलता है, हमारी कुछ इच्छा भी रहती है कि जब हम चलें तभी तो इकट्ठे हुए, तो वो इच्छा और सत्संग ये दुर्लभ बताया। शंकराचार्य महाराज ने कहा दुर्लभ त्रय में भी तक तीन चीज दुर्लभ है, एक तो मनुष्य शरीर और फिर मेरा कल्याण हो जाए ये इच्छा, और उसमें भी फिर महापुरुषों का मिलना, सत्संग का मिलना, ऐसा अवसर मिलना। तो महात्माओं के मिलने की बात बहुत ऊंची गई, आप से मिलकर हम भगवान की चर्चा करें, इसको भी दुर्लभ बताया। ये भी मामूली बात नहीं है, अपने उसको साधारण मानते हैं तो कृपा के कारण से मिल जाने से अपने को सरलता दिखती है। हमने तो मनुष्य शरीर दुर्लभ नहीं दिखता क्योंकि मिला हुआ मनुष्य बड़े हुए हैं, भाई हो चाहे बहन हो, कोई मनुष्य शरीर तो है ही, तो ये मिला हुआ सुगम मालूम देता है। तुरु को मानसो दे लब्ध्वा सुदुर्लभ मिदम भवसम भगवान के मानुष्यम, इसको सुदुर्लभ बताया है। तो ऐसा दुर्लभ पदार्थ हमारे को दुर्लभ मालूम नहीं देता। मिली हुई वस्तु जब तक मिली रहती है तब तक उसकी दुर्लभता का ज्ञान नहीं होता। वो नहीं रहती है तब पता लगता है भाई ये बात तो कठिन है। तो ये दुर्लभ साध अपने को सुलभता से मिला है तो इससे लाभ लेना चाहिए। और इसमें लाभ लेने के लिए केवल निमित्त मात्र हम मान लें, अपने आप को निमित्त बना लें। निमित्त बनने पर सहायता भगवान की है, संत महात्माओं की है। और सज्जन में एक बात और विलक्षण है कि सत्य मार्ग में हम चलते हैं, नियत हमारी साफ अच्छी होती है तो बैर रखने वाले, द्वेष रखने वाले, हमारा अनिष्ट चाहने वाले भी प्रकारांतर से उन्नति में हेतु होते हैं, हमारी उन्नति में कारण बनते हैं। वे भीतर से चाहते नहीं उन्नति करना, हमारी उन्नति हो जाए तो हमारी उन्नति के लिए वे बाधा करने वाले भी हमारे साधक हो जाते हैं। ये एक भगवान के सम्मुख होने की विशेष महिमा है। इसमें कोई अनिष्ट नहीं कर सकता, अनिष्ट करने वाले भी प्रकारांतर से हमारा भला ही करता है, दुख देने वाला भी हमारा पाप नाश करके उन्नति ही करता है। तो इस मार्ग में धावन मिले वाले से आंख में सिर्फ दौड़ो, ना करता है ना पड़ता है, ऐसा निष्कंठ का पंथा ये कांटा करता का आग्रह आदि के नहीं है, ऐसा बड़ा सीधा रास्ता है भगवान की तरफ चलने का। तो इसमें हम चलें तो लाभ जरूर होता है, इसमें संदेह नहीं है। परंतु हम उद्योग करेंगे निमित्त मात्र बढ़ जाएंगे तो बहुत विशेष लाभ ले लेंगे। लाभ होगा भगवान की कृपा पर, सन्मुख हो जी हो जब वर्षा बरसती है, परंतु इसके सन्मुख होने से जल इकट्ठा हो जाता है। ऊपर से जल गिर रहा है परंतु घड़ा को उल्टा कर दिया जाए उसमें नहीं आता, सन्मुख कर देते हैं तो भर जाता है, उसको क्या जो रहा है सन्मुख हो। ऐसे सन्मुख हुए जीव मोहे जब ही तो जन्म कोट यज्ञा से करोड़ों जन्मों के पाप स्वतः नष्ट हो जाते हैं सन्मुख मात्र होने से। तो सन्मुख हमारे को होना है, हमारा उद्योग उसके सामने चलने का है तेजी से, फिर होगा भगवान की कृपा से होगा, होता है कृपा है उसकी, होता है होता ही है। इस वास्ते हमें थोड़ा सा निमित्त बन जाना चाहिए, उन्मुख हो जाना चाहिए, सन्मुख हो जाना चाहिए, अपनी दृष्टि से अच्छे से काम में लग जाना चाहिए, फिर उन्नति स्वाभाविक होगी। और वो भी लगने में भी कृपा भगवान की है, जैसे मनुष्य शरीर है ये भी रामायण में आया है, कबू की करी करुणा नरगे ही वेद इस दिन हेतु सने ही। प्रभु का विशेषण दिया है कि बिना हेतु स्नेह करने वाले, तो बिना हेतु ही कृपा करने वाले भगवान जो सबल कृपालु, स्वतः नाम उनका कृपालु है, कृपा करने का स्वभाव जिनका होता है, ये स्वभाव में आदर्श प्रत्यय होता है, तो भी कृपा करने का स्वभाव है, आदत है उनकी, जैसे सूर्य के प्रकाश करने की आदत है, स्वतः ही आदत क्या है प्रकाश होता है, करना नहीं पड़ता है, ऐसी भगवान की कृपा भगवान को करनी नहीं पड़ती है, स्वाभाविक कृपालु कृपा होती है। तो ऐसे कृपालु भगवान बिन हेतु स्नेह करने वाले करुणा करी कबू के नर कबू भगवान कृपा करके, तो कृपालु भगवान विशेष कृपा करके और मानव शरीर देते हैं। तो मनुष्य शरीर मिला तो भगवान की विशेष कृपा ये पहचान है, और मिलने पर भी कुछ इच्छा हुई हमारी कि हमारा कल्याण हो उद्धार हो, ऐसे विचार हुआ ये विशेष कृपा। इससे भी विशेष जब आपस में बैठकर हम भगवत चर्चा करते हैं, विचार करते हैं, भगवान की तरफ चलने का आयोजन करके इकट्ठे होकर चर्चा करते हैं, ये भगवान की बहुत और विशेष कृपा है। ऐसा कृपा वो भी महाराज देर कृपा, अभी कलयुग के समय में जहाँ नास्तिकता है, पतन की तरफ बड़े जोरों से प्रवाह चलता है, ऐसे समय में अगर इसलिए से सत्संग मिलता है तो कितनी विशेषता है। ये भगवान की बड़ी अलौकिक विलक्षण कृपा है, जिस कृपा से हम इधर लगे हुए हैं। एक बात और ध्यान देने की है, इसका पता नहीं है। पहले तो शरीर का पता नहीं है कि शरीर कितना दिन रहेगा, और शरीर रहेगा तब तब ही स्वास्थ्य का पता नहीं कि हम ऐसे सजग और स्वास्थ्य रहेगा हमारा, ठीक तरह से हम निरोग रहेंगे, जो सत्संग करने के लायक बने रहे, इसका भी पता नहीं। एक और बात है सज्जनों ध्यान देने की, कि ये जो भाव है हमारा ये भी हरदम रहे इसका कुछ भरोसा नहीं है। जब भाव बन गया सत्संग का और विभिन्न ध्यान का, तो इससे लाभ उठा लेना चाहिए। ये भाव भी स्थायी रह जाए इसका कुछ भरोसा नहीं। मैंने देखा है ऐसे जिन भावों को बर्बाद में तो उतरने के भाव थे, वैसे भाव कभी कभी नहीं रहे हैं, किसी किसी के नहीं रहे हैं। तुम्हारे रहेगा क्या पता है, तो हमें तो तत्परता से लाभ ले लेना चाहिए। आ गया है मौका, काल कर सो आज कर, आज कर सो अब, पल में पड़ रहे होगी फिर करेगा कब, तो कल करना वो आज करो, आज करना वो अभी करो, अभी तूर्णम यथेत न पतेतन मृत्यु यावत, मौत न आ जाए स्वास्थ्य ठीक रहे, यावत स्वस्थ दिगम का लेवर गृह यावत से दूर है जरा वृद्धावस्था दूर है, इंद्रियों की शक्ति इंद्रिय शक्ति प्रतियता यावत क्षयोदाय आयु समाप्त नहीं होती है, तावदेव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान, तब तक महान पार कार्य कर लेना चाहिए, प्रयत्न कर लेना चाहिए। प्रोदीप से भवन है तो कुआ करना, जैसे आग लग जाए तो अब कुआ बढ़ाओ भाई, जल्दी जल्दी पानी लगा आग बुझाएंगे, अब कुआ बढ़ करके पानी कब आएगा, ऐसे अंत समय क्या होगा। भगवान की कृपा तो एक विलक्षण है, अंधकार में भगवान की याद आ जाए तो बड़ा पार हो जाए, परंतु अपने क्यों रहते, अपने तो पहले ही पहले कर ले, इसमें रहते हुए सही के रहते रहते ही तब बात भी है, तो ऐसा मौका है तो अपना उद्धार कर लेना चाहिए बड़े उत्साह से, क्योंकि इसमें मदद है, भगवान की मदद है। भक्त जितने हो गए हैं और हैं और होंगे उन सबकी मदद है, अगर ही होने वालों की भी मदद है संतों की, क्योंकि उनका भाव रहता है जीवों की उनका कल्याण हो जाए, तो वो मदद हमारे साथ में पहले हो गए उनकी भी है, उनकी भी अगर ही संत होंगे उनके भी भाव हमारे ऊपर कृपा कर रहेंगे जिससे हमारे कल्याण होगा। तो ऐसा मौका मिलने पर हमें निराश नहीं होना चाहिए, हताश कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत मदद है, हमारे पक्ष बड़ा प्रबल है, ऐसे उत्साह रख करके चलना चाहिए। और वो जितना ही इनका भरोसा रखेगा, जितना ही उत्साह अपने में ज्यादा रखेगा, उतना ही अधिक लाभ ले लेगा, इसमें संदेह नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है, निसंदिग्ध बात है। तो हम इसमें बड़े उत्साह से लगे, सत्संग की बातों को सुने तो सुनते समय बिल्कुल एक एक बात को ठीक से सुने, और उनमें जो काम में ला रही चीज है असली उनको लावे, जो त्याग करने की उनको त्याग करें, तत्काल ही आज हुआ तो आज ही शुरू कर दें, देरी का काम नहीं है। दुर्गुण दुराचारों के त्याग की बात, सद्गुण सदाचारों के ग्रहण करने की बात, भगवत संबंधी बातों को ठीक तरह समझ में काम लाने की बात, इसमें तत्परता से बड़े उत्साह से लग जाना चाहिए, तो फिर हमारी उन्नति निश्चित है, इसमें संदेह नहीं है। मनुष्य शरीर मिला ही इसके लिए है। एक बात और कहता हूं, ये विशेष ध्यान दिलाने के लिए बीच में बोलता हूं कि आप ध्यान दें, कई लोग इसमें निराश हो जाते हैं, हमारे सामने भी कोई कोई कह देते हैं कि भगवत प्राप्ति भाई होगा नहीं, इतना तो हमारे से नहीं होगा, तो ऐसे कभी नहीं मानना चाहिए। कितना ही पाप दुराचार हो जाए तो भी भगवान से निराश नहीं होना चाहिए, परमात्मा की कृपा है, उनसे होने में क्या बड़ी बात है। तो किसी भाई बहन को भी भगवत संबंधी बात में निराश नहीं होना चाहिए, और ये बात भी प्राप्त से होती है, पूर्व कर्म ये कर्मों का फल नहीं है, ये तो नया उद्योग है। प्राप्त से वो होता है जो फल होता है कर्मों का, सुखदायी दुखदायी परिस्थिति आती है वो तुम्हें कर्मों का फल, परंतु अपने उन्नति करना, परमात्मा की तरफ चलना है, ये कर्मों का फल नहीं है। ये तो भगवान की कृपा का फल है, हमारे को मिला है अवसर। अब निमित्त मात्र भव सभ्य साचन, निमित्त मात्र अपने बन जाओ, फिर काम तो हुआ हुआ है उसकी कृपा से। अपने हाँ में हाँ मिला तो इतने में काम बनता है, भगवान की कृपा से। भगवान ने बहुत कृपा की है, तुम अवसर मिला है, तो अब इसमें बड़े उत्साह से अगाड़ी चलना है। हताश निराश कभी नहीं होना है, परमात्मा की तरफ से निराश कभी नहीं होना, कभी नहीं होना, कभी नहीं होना है। ये विशेषता से आप ध्यान दें कि हमारा कल्याण कैसे हो सकता है, हम धनी कैसे हो सकते हैं, हमारे संसार में नाम कैसे हो सकता है, शरीर हमारा निरोग कैसे हो सकता है, इसका पता नहीं है। ये है प्रारब्ध का फल, शरीर निरोग हो जाए, धनी हो जाए, हमारा नाम हो जाए आदि, ये मुख्यता से प्रारब्ध का फल है। नए उद्योग से भी काम होता है, तो मनुष्य शरीर है, इसमें बहुत योग्यता है, बहुत अधिकार है, परंतु कल्याण में तो खास बात है। कल्याण के लिए ही भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है। अभी रसोई में जाकर बैठ गए, परोस दिया, अब भोजन कैसे होगा, अरे तो भोजन के लिए तो सब तैयारी हुई है, इसलिए कल्याण के लिए तो मनुष्य की तैयारी है। इस वास्ते मनुष्य शरीर पा करके कल्याण से निराश कभी नहीं, भगवान की प्राप्ति से हताश कभी ना हो, ये तो खास अपनी बात है। इस वास्ते बड़े उत्साह से इसमें नहीं जाना चाहिए। निमित्त मात्र बनने से भगवान की कृपा से उद्धार हो जाता है। नारायण 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 नारायण।
राम यह प्रवचन परम सत्य स्वामी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा 3 जुलाई 1990 को प्रातः 8:30 बजे हुआ। राम।